आज हम एक ऐसे हीरे की कहानी में गुता लगा रहे हैं जिसका नाम दुनिया भर में मशहूर है और हाँ, विवादों से भी घिरा हुआ है, कोहिनूर। इसकी यात्रा सदियों और सल्तनतों की कहानी कहती है। आज ये टावर ऑफ लंदन में है, ब्रिटिश ताज का हिस्सा, पर इसकी शुरुआत हुई थी भारत की धरती पर। तो आज का हमारा इरादा है, हमारे पास जो स्रोत हैं जैसे मैप एकेडमी का शोध, एम्पायर पॉडकास्ट की बातें और ओडोजिया की चीके नजरिए, उनका इस्तेमाल करके कोहिनूर के इतिहास की परतें खोलना। हम ये देखेंगे कि इसमें कितना मिथक है, कितना सच, और आखिर ये पत्थर सिर्फ एक पत्थर है या कुछ और। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। कोहिनूर की शुरुआत को लेकर ना बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। सबसे आम कहानी तो यही है कि भाई गोलकुंडा की खदानों से निकला, फिर किसी मंदिर में मूर्ति की आंख बना और वहां से अलाउद्दीन खिलजी के लोग इसे लूट लाए।
सुनने में तो सच में बिल्कुल फिल्मी लगता है। हाँ, ये कहानियां सुनने में तो बहुत रोमांचक हैं, बिल्कुल, लेकिन ऐतिहासिक तौर पे देखें तो इनके पुख्ता सबूत मिलना वो जरा मुश्किल काम है। हमारे स्रोत, खासकर अगर MAP एकेडमी और एम्पायर पॉडकास्ट का विश्लेषण देखें, तो वो बताते हैं कि कोहिनूर का पहला भरोसेमंद जिक्र वो मिलता है 1740 के दशक में, जब ईरान के शासक थे ना नादिर शाह, उनके जीवनी लेखक थे मोहम्मद काजम मारवी, उन्होंने इसके बारे में लिखा था। वो पहला पक्का जिक्र है। और हाँ, जो ये मूर्ति की आंख वाली कहानी है वो शायद काफी बाद में घड़ी गई। कुछ इशारे मिलते हैं, जैसे एम्पायर पॉडकास्ट वाले बताते हैं कि ये शायद किसी ब्रिटिश दस्तावेज से निकली हो। इतिहास में अक्सर ऐसा होता है, मतलब वक्त के साथ कहानियां बदल जाती हैं, रंग ले लेती हैं।
अच्छा, यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। मतलब एक तरफ तो ये सदियों पुरानी लगने वाली कहानियां हैं और दूसरी तरफ वो इतिहास जिसके दस्तावेज हैं हमारे पास। शायद ये विरोधाभास ही इस हीरे को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। तो फिर उस रास्ते पर चलें जिसके निशान ज्यादा साफ हैं। हमारे जो शोध स्रोत हैं जैसे मैप एकेडमी, वो क्या बताते हैं इसके शुरुआती सफर के बारे में, कहां से शुरू हुआ ये सब?
हाँ, तो माना यह जाता है कि हीरा शायद 13वीं सदी के आसपास मिला। कृष्णा गोदावरी डेल्टा का जो इलाका है जिसे गोलकुंडा या कोल्लूर खदानें कहते हैं, वहां मुमकिन है कि यह पहले काकतीय राजवंश के पास रहा हो। फिर लगभग 1310 के आसपास इसे दिल्ली सल्तनत को नजराने के तौर पर दिया गया। दिल्ली सल्तनत उस वक्त उत्तर भारत में बड़ी ताकत थी।
अच्छा, काकतियों से दिल्ली सल्तनत?
जी, और वहां से ये दिल्ली पर राज करने वाले कई वंशों जैसे खिलजी, फिर तुगलक, इनसे गुजरता हुआ आखिरकार 1526 में जब बाबर आया तो उसके जरिए मुगलों के खजाने में पहुंच गया। बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा में इसका जिक्र भी किया है, तब शायद इसे बाबर का हीरा कहते होंगे।
हाँ, सुना है।
बाद में फिर शाहजहां ने उसे अपने मशहूर मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस में जड़वा दिया। वो तो मुगल शानो शौकत का प्रतीक था एक तरह से।
मयूर सिंहासन, मुगल शान का ये प्रतीक, पर ये शान हमेशा तो नहीं रही, मतलब फिर एक बड़ा तूफान आया है ना?
बिल्कुल बिल्कुल। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, भयंकर लूटपाट हुई और वो मयूर सिंहासन समेत बेशुमार दौलत लूट ले गया। MAP एकेडमी का शोध यही बताता है कि उसी ने इस हीरे की चमक देखकर इसे नाम दिया कोहेनूर, यानी रोशनी का पहाड़।
कोहेनूर नाम भी उसने दिया?
हाँ, नादिर शाह की मौत के बाद ये हीरा उसके अफगान सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया, जो बाद में अफगानिस्तान का शासक बना। और फिर कहानी पहुंचती है पंजाब। कई दशकों बाद 1814 में सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह, बहुत ताकतवर शासक थे, उन्होंने अफगानिस्तान के भगोड़े शासक शाह शुजा दुर्रानी को पनाह दी और कह सकते हैं बदले में उससे ये हीरा हासिल कर लिया। सिखों के लिए तो ये उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा निशान बन गया था।
लेकिन फिर अंग्रेजों का दौर आ गया, पंजाब का विलय। 1849 में जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया तो लाहौर की संधि हुई, और इसी संधि की एक बहुत विवादास्पद शर्त थी जिसके तहत महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह, जो तब सिर्फ 10 साल के थे, उन्हें कोहेनूर महारानी विक्टोरिया को सौंपने पर मजबूर किया गया। सिर्फ 10 साल के बच्चे से इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक हीरा ले लेना, ये बात तो आज भी मतलब बहस का मुद्दा है।
बिल्कुल। और ब्रिटेन पहुंचने के बाद इस हीरे का भाग्य फिर बदला। MAP एकेडमी के अनुसार इसका जो मूल वजन था वो करीब 190 कैरेट्स था। लेकिन जब इसे 1851 में लंदन की ग्रेट एग्जीबिशन में रखा गया तो देखने वालों को ये कुछ फीका सा लगा।
फीका? इतना मशहूर हीरा?
हाँ, क्योंकि जो भारतीय कटिंग थी वो चमक से ज्यादा वजन पर जोर देती थी, तो वो यूरोपीय मानकों पर खरी नहीं उतरी शायद। इसलिए महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट, उन्होंने इसे दोबारा तराशने का फैसला किया। 1852 में इसे डच कारीगरों ने तराशा और इसे मौजूदा 105.6 कैरेट का ओवल ब्रिलियंट कट दिया गया।
चमक तो बेशक बढ़ गई, पर वजन देखिए काफी कम हो गया।
हाँ, वजन तो काफी कम हो गया
जी।
महारानी विक्टोरिया ने इसे पहले एक ब्रोच में पहना, फिर ये महारानी अलेक्जेंड्रा, महारानी मैरी और आखिर में महारानी एलिजाबेथ, जो क्वीन मदर थी, उनके ताज का हिस्सा बना।
तो इस सब का क्या मतलब है? आज ये कहाँ है और इसकी कहानी का कह सकते हैं अगला मोड़ क्या है?
आज कोहिनूर टावर ऑफ लंदन में है, ब्रिटिश क्राउन जूल्स का जो संग्रह है उसमें महारानी माँ एलिजाबेथ के ताज में जड़ा हुआ है। लेकिन नहा कहानी खत्म नहीं हुई। भारत, पाकिस्तान, ईरान और यहाँ तक कि अफगानिस्तान का तालिबान शासन भी वो सब इस पर अपना दावा जताते रहे। ओडोजिया कुची और मैप एकेडमी जैसे स्रोत यही बताते हैं कि ब्रिटेन हमेशा से इसे लौटाने से इनकार करता आया है। वो 1849 की लाहौर संधि और इसके जटिल इतिहास का हवाला देते हैं।
जटिल तो है।
तो ये हीरा अब सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं रहा, ये एक प्रतीक बन गया है औपनिवेशिक दौर की लूट का, देशों की अस्मिता का, अनसुलझे ऐतिहासिक दावों का और जो सांस्कृतिक विरासत पर बहस चलती है उसका भी। और हाँ, वो श्राप वाली कहानी भी है इससे जुड़ी कि ये पुरुष शासकों के लिए दुर्भाग्य लाता है। शायद इसीलिए ब्रिटिश शाही परिवार में से सिर्फ रानियों ने ही पहना है।
तो ये थी कोहिनूर की कहानी। भारत की खदानों से निकलकर मुगल तख्त की शान बनकर, सिख साम्राज्य की ताकत का प्रतीक बनकर और आखिर में ब्रिटिश ताज का हिस्सा बनने तक का सफर। ये वाकई विजय, शक्ति, सियासत और बदलते वक्त की एक असाधारण दास्तान है।
सही कहा। और शायद इसके मालिका ने हक की बहस से भी आगे बढ़कर सोचने वाली बात यह है कि कैसे बेजान चीजें भी इतना गहरा मतलब और इतना इतिहास अपने अंदर समेट लेती हैं। कोहिनूर की कहानी आज भी दुनिया में ताकत के बदलते रिश्तों और अपने अतीत को, अपने इतिहास को समझने की हमारी जो कोशिशें हैं उनके बारे में क्या बताती है। ये सवाल शायद हीरे की अपनी चमक से भी ज्यादा पेचीदा और जरूरी है।